Verse 46. Self-knowledge is attained at the very moment of self-realization, and self-knowledge is gained at the very instant of knowing the real self. तो यहाँ पर शंकराचार्य हमें ये बता रहे हैं कि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार दोनों एक ही साथ होते हैं. ऐसा नहीं होता कि एक पहले हुआ फिर दूसरा हुआ, दोनों साइमल्टेनियसली एक ही साथ. और वो होने के लिए आपको कोई टिकट बुक कराने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आपको कहीं घूमने जाना हो, कोई जगह जाना हो, आपको एम्स्टरडैम जाना है, तो आपको प्लेन की टिकट करानी पड़ेगी, वीज़ा लेना पड़ेगा. आत्मज्ञान होने के लिए, अपने सेल्फ को जानने के लिए आपको कोई समय, स्थान, टिकट बुकिंग की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि कहीं जाना ही नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी है, आप वहीं पर हो. अपने आप में पहुँचने के लिए क्या आपको एक्शन लेना पड़ेगा? फिर वो बताते हैं कि जैसे आपको आम खाना हो तो आपको सीज़न का इंतज़ार करना पड़ता है ना, आम एक पर्टिकुलर सीज़न में आता है. लेकिन आत्मज्ञान के लिए आपको किसी सीज़न का इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. क्यों? आपका जो सेल्फ है वो कभी गुमा ही नहीं है, वो यहीं पर है. अगर जो चीज़ गुमी ही नहीं है तो वो पाई कैसे जाएगी? वो तो था, है और यहीं पर है. सब चीज़ें आपसे दूर हैं, आपका शरीर भी आपसे दूर है, आपकी दौलत भी आपसे दूर है, आपके रिश्तेदार भी आपसे दूर हैं, लेकिन आप जो हो, आपका जो सेल्फ है, आपका जो आत्मन है, वो आपके बिल्कुल पास है. आपका मन भी आपसे दूर है और वो भी गुम हो सकता है, लेकिन आप अपने आप से कैसे गुम हो सकते हो? आप अपने आप से कैसे छुप सकते हो? यू कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम योर ओन सेल्फ. जैसे कि अगर आप अपना बहुत दिन तक अपना चेहरा शीशे में ना देखें तो क्या आप अपना चेहरा भूल जाएंगे? जैसे ही देखेंगे आपको पता है कि ये आप ही हो. बिल्कुल इसी तरह है, चाहे अभी आपको ध्यान नहीं है, अपना सेल्फ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही दिखेगा आप एकदम से उसे पहचान जाएंगे कि अरे हाँ, यही तो है, यही तो मैं हूँ. शंकराचार्य यही कहते हैं कि जैसे ही आपको अपने तत्व का ज्ञान होगा, उसी समय आत्मज्ञान आपको हो जाएगा. फिर एक सवाल यहाँ पे आ सकता है कि इतना हम अपने आत्मन के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं हो रहा? क्यों इतना सब सुनने के बाद भी नहीं हो रहा कि वो मेरे पास है, खोया नहीं है, कोई सीज़न नहीं है उसको जानने का, कहीं जाना नहीं है, फिर भी मुझे ज्ञान नहीं हो रहा? तो उसका वो जवाब देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो पहचान है इस मनोशरीर यंत्र के साथ, वो बहुत गहरी है. इतनी गहरी हो गई है कि हज़ारों लाखों बार सुनने के बाद भी वो जाता नहीं है. बार बार वो मन में संशय पैदा करता है कि पता नहीं ऐसा है कि नहीं है. और उसका एक और कारण ये भी है कि आप सुन तो रहे हो, लेकिन पता नहीं सच में सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो. एक तो आपका जो मन है थोड़ा आलसी भी होता है, थोड़ा सुन रहे हैं, थोड़ा नहीं सुन रहे. फिर सुनते सुनते आपका ध्यान किसी और चीज़ पे चला जाएगा, कुछ आपको याद आ जाएगा, अरे कल ऑफिस में ये हुआ, मेरे बेटे के साथ ये हुआ, पता नहीं क्या दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी. तो सुन रहे हैं, सुनते सुनते आपका मन आपको किसी और ही यात्रा पे ले जाएगा, तो सुनते हुए भी आप नहीं सुन पाते हैं. जैसे कि एक मेंटली चैलेंज्ड अगर कोई हो तो उसको आप कुछ भी बताएं, वो उस चीज़ को रख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है जो चैलेंज्ड है. बिल्कुल इसी तरह आपकी बुद्धि भी इतनी तैयार नहीं हुई है कि इस ज्ञान को पकड़ पाए, समझ पाए. एक और उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको अपने हाथ में एक पानी का ग्लास भी रखना है, पकड़ना है, तो आपका जो हाथ है वो स्थिर होना चाहिए. नहीं तो अगर हाथ बार बार हिल रहा है तो पानी का ग्लास आपके हाथ से गिर जाएगा, छूट जाएगा. बिल्कुल उसी तरह इस ज्ञान को समझने के लिए भी आपकी बुद्धि का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं है, वो अभी डोल ही रही है, तो ये ज्ञान भी आपके पास टिक नहीं पाता, गिर जाता है। जब भी गुरु के पास बैठकर ये ज्ञान लिया जाता है, उस समय पूरा ध्यान, पूरी बुद्धि, पूरी चेतना, पूरी आपकी आंखें, इंद्रियां गुरु के वचनों पर ही स्थिर होनी चाहिए। अगर वो नहीं रह सकती तो इस ज्ञान को समझना, रखना बहुत मुश्किल काम है। एक उन्होंने बहुत अच्छी एक कहानी सुनाई कि एक बार एक महात्मा प्रवचन दे रहे थे। वो एक लकड़ी के बेंच पे बैठे हुए थे और उनका एक शिष्य सामने बैठा हुआ था नीचे, जो वो सुन रहा था। तो जब कुछ घंटों के बाद जब वो प्रवचन समाप्त हुआ, तो महात्मा अपना पैर नीचे रखने वाले थे, तो शिष्य ने बोला, रुकिए गुरुदेव, आपके पैर के, आपके लकड़ी के बेंच के नीचे एक सांप बैठा हुआ है, मैं ज़रा उसको हटा दूँ। तो गुरु ने बोला, अरे सांप बैठा हुआ था बेंच के नीचे, तो तुमने पहले बताया क्यों नहीं, हो सकता है ये तुम्हें काट जाता। तो फिर तो शिष्य ने बोला अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कि मैं एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहता था इस सांप को हटाने के लिए। मुझे आप जिस गति से बोल रहे थे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। क्यों? अगर ये सांप काट भी जाता तो सिर्फ इस शरीर की मृत्यु होती, लेकिन आप जो ज्ञान दे रहे थे, उससे जो जहर मेरे मन के अंदर, जो अज्ञान का जहर भरा हुआ है, वो जो आप हटा रहे थे, वो हटाना ज़्यादा ज़रूरी था। पता नहीं कितने जन्मों से मेरे अंदर अज्ञान का जहर है, वो कैसे हटता? इस शरीर में अगर जहर चला भी जाता, ये शरीर समाप्त भी हो जाता, उसका तो कुछ लेना है ही नहीं। पता नहीं कितने ऐसे शरीर मैं पा चुका हूँ और खो चुका हूँ, तो कुछ भी मतलब नहीं है इसका। तो ये यहाँ पे समझाने के लिए है कि कितना एक शिष्य का जो मन है, कितना साफ है, वैराग्य है और कितनी चाह है उसे ये जानने की। तो वैराग्य और ध्यान दोनों की बहुत ज़रूरत है अगर आपको वेदांत के ज्ञान को समझना है, नहीं तो कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। इनफैक्ट पहले के ज़माने में, और कुछ महात्मा तो आज भी हैं, जो आपको वेदांत का ज्ञान सिर्फ तब देते हैं जब आपकी निर्विकल्प समाधि लग चुकी हो। जब तक वो नहीं लगती, आपको ज्ञान नहीं दिया जाता। लेकिन आजकल के गुरुओं को पता है कि शिष्य में इतनी क्षमता नहीं है, तो वो बहुत चीज़ें कराते हैं। वो तो आसन, प्राणायाम, हर चीज़ से शुरुआत से करा रहे हैं। नहीं तो पहले शिष्य का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पहले निर्विकल्प समाधि लगाए, उसमें आए, उसके बाद ये ज्ञान सुनने के लिए आए। जब जो श्रोता है, जो शिष्य है, पूरी तरह से गुरु के शब्दों में खो जाता है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द हाईएस्ट नॉलेज बीइंग गिवन बाय द गुरु, उस एक क्षण में उसको ज्ञान हो जाता है। एक क्षण लगता है ज्ञान होने में। तो कभी ये भी पूछा जाता है कि ज्ञान हो भी गया तो उससे क्या बदल जाएगा? उससे क्या बदल जाएगा? उससे आपका जितना भी अज्ञान है, आपकी जितनी भी गलत धारणाएं हैं, वो सब गिर जाएंगी। जो आपने सोचा हुआ है कि मैं ये शरीर हूँ और ये रिश्ते मेरे हैं, ये जो आपके दिमाग में आइडिया है कि मैं कौन हूँ, ये सब बदल जाएगा। जैसे ही मैं ये शरीर नहीं रहता, उसी समय इस शरीर के सारे रिश्ते भी मेरे नहीं रहते, तो इसलिए मेरा मेरेपन का सवाल ही खत्म हो जाता है। और शंकराचार्य एक उदाहरण देते हैं कि जैसे जंगल में कोई यात्री खो गया हो रात के अंधेरे में, और वो कभी पेड़ों में घुस रहा है, कभी पत्थरों से गिर रहा है, कभी कांटों वाली झाड़ियों में घुस रहा है, लेकिन सुबह जैसे ही रोशनी आती है तो उसको एकदम अपना रास्ता साफ नज़र आता है, वो अपनी जितनी भी मुश्किलें हैं उनको अवॉइड कर सकता है क्योंकि वो देख सकता है रोशनी में। बिल्कुल ऐसे ही जब तुम अपने आप को देख लेते हो, अपने आप को जान लेते हो, तो इस संसार में रहने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। अभी तुम जितने भी कर्म कर रहे हो वो अज्ञान में कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है, कंफ्यूज्ड हो, लेकिन उसके बाद बहुत क्लैरिटी आ जाती है। एक और उन्होंने यहाँ पे चीज़ बताई है, सन्यास जो लोग लेते हैं कि उसका रीज़न क्या होता है सन्यास लेने का। तो जो सन्यासी है वो बोलता है, देखो मैं तो अज्ञानी हूँ, इस अज्ञान में पैदा हुआ हूँ मैं, और क्यों शादी ब्याह करके बच्चे पैदा करके और अज्ञानियों को पैदा करूं? मैं इस कर्मा को और बढ़ाना नहीं चाहता। पहले भी अभी तक जो भी ये मेरा जन्म हो रहा है, मनुष्य जन्म मिल रहा है, ये भी कर्म बंधन के कारण ही है, और अब मैं इस कर्म बंधन को समाप्त करना चाहता हूं ताकि आगे कुछ वंश चलाने का चक्कर ही ना रहे। और ये सारा जो धंधा चल रहा है गिव एंड टेक का, कर्म क्या है, बंधन क्या है, कि आपने किसी से कुछ लिया है उनको देना है, तो ये लेन देन का पूरा समाप्त हो जाए। क्योंकि आज तुम जिनको पैदा करोगे उनके ऊपर बंधन चढ़ेगा, फिर कल वो फिर से तुम्हारे उस बंधन को आगे ले जाते ही रहेंगे, चाहे तुम्हारे दादा हों परदादा हों, सब जो हैं ये कर्म बंधन के कारण ही चल रहा है पूरा। और कुछ लोग तो सन्यास के समय कुछ प्रथाएं ऐसी हैं कि गुरु आपका श्राद्ध भी करवा देता है, श्राद्ध भी, कि आज से ये जो शरीर और ये जो मन और ये जो पहचान है ये समाप्त, आज से ना कोई रिश्ते हैं और ना ही कोई पितृ हैं, मतलब श्राद्ध करके पितरों से भी उस चीज़ को समाप्त कर दिया जाता है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनसे भी पूरा तोड़ लिया जाता है। जो सबसे बड़ी अज्ञान की कड़ी है वो है मैं और मेरा, इसकी वजह से ही इस संसार के जंगल में जो है इंसान भटका हुआ है, तो उसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ गुरु ही है जो आपको इस अज्ञान के जंजाल से निकाल सकता है, गुरु ही है जो ज्ञान का प्रकाश दे सकता है, और उस प्रकाश में आप देख सकते हो कि आपका क्या है, आप कौन हो, और वही वही रास्ता है जो आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाता है।